एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरुप्रसाद परिपूर्ण परमात्मा दिया अनंत बख्शिशां दे चम जो अदुती बख्शिशां ने उन्हें मनुख नू प्रदान कीते हुए ज्ञान इंद्रे अखां कन रसना नासका त्वचा खलड़ी इन्हां दी इतनी महानता है कि इन्हां नू कहिंदे ने ज्ञान इंद्रे। मनुख जितना ज्ञान उपार्जन करता है, मनुख जितना ज्ञान संग्रह करता है, मनुख जितना ज्ञान इकट्ठा करता है, इन्हां पंजां दे आसरे ते ही करता है। अगर मनुख कोल दृष्ट शक्ति ना होवे, स्रोत शक्ति ना होवे, भाव अखा नहीं, कन नहीं और रसका ना होवे, त्वचा विच स्पर्शता दा बोध ना होवे, तो फिर मनुख ते पत्थर विच कोई अंतरा रह नहीं जाता। पत्थर वेख नहीं सकता, पत्थर सुन नहीं सकता, पत्थर सौंग नहीं सकता, पत्थर बोल नहीं सकता और पत्थर स्पर्श भी नहीं कर सकता। एक पत्थर दे कोल पत्थर पे है, कुछ भी नहीं पता कि मेरे कोल दूजा पत्थर भी पे है, तीसरा पत्थर भी पे है। भाव दूसरे दा ज्ञान प्राप्त हो सके, दूसरी वस्तु, दूसरी हस्ती, दूसरी चीज, उसले ज्ञान इंद्रियां दा होना अत्यंत लाजमी है। अनंत बख्शिशां दे चां अकाल पुरख दी दित्ती होई ए महान बख्शिश है। तदी ते एक एक इंद्रे दे प्रति धन गुरु अमरदास जी महाराज सानू सुचेत कर देने, सावधान कर देने। जे प्रथम लईए इना अखां नू बड़ी खूबी है, जगत विच कहिंदे ने अखां हैं ते संसार है, अखां गईयां संसार गया। संसार दा आकार रंग रूप दा बोध जो मन नू मिलदा है अखां दे राही मिलदा है और नेत्रहीन मनुख दया दा पात्र है। उहदे कोल आकार दा नहीं, अगर उसका परिवार भी है, मां सामने है, मां दे आकार दा उसनू बोध नहीं है, पिता सामने बैठा है, पिता दे रंग रूप दा उसनू ज्ञान नहीं है, भैण भी सामने बैठी है, भरा भी सामने बैठा है, पर उसके नैन नक्श कैसे ने, उहदा आकार कैसा है, कुछ भी बोध नहीं। पदार्थां दा रंग रूप की है कुछ भी पता नहीं। अगर उसकी ग्रस्त जिंदगी होवे, पत्नी होवे या पति होवे, नेत्रहीन स्त्री दा की रंग है, की आकार है, की रूप है, कोई भी बोध नहीं, कोई भी बोध नहीं। आकार दी भी अपनी महानता है। 80% ज्ञान बैरूनी बार दा मनुख नेत्रां दे राही संग्रह करता है, देख देख के संग्रह करता है। दर्शन दी अपनी महिमा है, वेखण दी अपनी महिमा है, दृष्टि दी अपनी महिमा है, दृष्टि दा अपना पसारा है। एक साइंटिस्ट अगर उसकी दृष्टि कम नहीं करती तो फिर साइंटिस्ट दा सारा विकास, एक वैज्ञानिक दी सारी बुद्ध रुक जाएगी, वेख नहीं सकता। जद वेख नहीं सकता तो खोज की करेगा, जद वेख नहीं सकता पदार्थ नू, किसी वस्तु नू, किसी हस्ती नू, तो उस दे पारे वो बोध की दे सकता, उस दे पारे वो जानकारी के हासिल कर सकता है और उस दे बारे वास्तविक वो की ज्ञान हासिल करेगा। अखां दी अपनी महिमा, पर अखां दी एक अपनी कमजोरी है। अखां सारे संसार नू देख सकदियां, सूरज चंद तारियां नू देख सकदियां ने, अखां उचियां उचियां इमारतां नू देख सकदियां ने, पहाड़ां नू देख सकदियां ने, सूक्ष्म तो सूक्ष्म चीजां नू देख सकदियां ने ਅਸਥੂਲ ਤੋਂ ਅਸਥੂਲ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕੈਸੀ ਹਾਂ। ਵੇਖਣ ਲਈ ਦਰਪਣ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਅੱਖ ਕੈਸੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਕੈਸੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪੁਤਲੇ ਕਾਲੇ ਨੇ, ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਹੈ, ਮ੍ਰਿਗ ਨੈਣ ਨੇ ਜਾਂ ਆਮ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਬੋਧ ਦਰਪਣ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਅੱਖ ਅੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੀ, ਅੱਖ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਰੜਕ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੀ। ਦੂਸਰਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੀਸਰਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਜ਼ਰਾ ਵੇਖ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਜੋ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਈ ਹੋਈ ਰੜਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੀਆਂ। ਔਰ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਇਹ ਰੜਕ, ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਤਿਨਕਾ, ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਅਸਮਰਥ ਨੇ। ਭਾਵ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਦੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਰ ਦੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਖਾਂ ਵਾਸਤਵਿਕ ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਈਏ ਦੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਨੇ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕੇਗੀ। ਅੱਖ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਬੋਧ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ, ਦਸ ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ, ਸੌ ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ, ਦੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਓ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦੂਰਬੀਨ। ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬੀਨ, ਬੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖਣੇ ਨੂੰ, ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੀਨਾਈ, ਵੇਖਣਾ, ਦੂਰਬੀਨ, ਦੂਰ ਤੋਂ ਵੇਖਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੀ, ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਦੂਰਬੀਨ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅੱਖ ਵੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਨਿਕਟਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਨਿਕਟਤਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੜਕ ਪੈ ਗਈ, ਤਿਨਕਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਦ ਅੱਖ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੈਠਾ, ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਣਗੀਆਂ ਉਸਨੂੰ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਨਾਨਕ ਸੇ ਅੱਖਣੀਆਂ ਬੇਅਨ ਜਿਨੀ ਦਿਸੰਦੋ ਮਾਂ ਤੇਰੀ। ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਹੋਰ ਨੇ, ਹੋਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖੀਦਾ, ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਵੇਖੀਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਲਾਨੀਆ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਧੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਅਨ ਜਿਨ ਮੁਖ ਲੋਣ ਨਾਏ, ਅੰਧੇ ਸੇ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਖਸਮੋ ਗੁੱਥੇ ਜਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਧਾ ਨਾ ਆਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਵਸਤੂਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਉਸਨੂੰ ਅੰਧਾ ਆਖੋ ਜੋ ਨਿਕਟ ਤੋਂ ਨਿਕਟ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਅੰਧਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਧਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੱਕ ਦੂਰ ਦੇ ਤਲ ਦਾ ਅੰਧਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਕਟ ਦੇ ਤਲ ਦਾ ਅੰਧਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਰ ਦੇ ਤਲ ਦੇ ਅੰਧੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਧਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਧਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜਾਂ ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰਹੀਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਧੇ, ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ, ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਟ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜੋ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਨੇੜੇ, ਨਿਕਟ ਤੋਂ ਨਿਕਟ, ਨਿਕਟ ਤੋਂ ਨਿਕਟ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਧਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਜਗਤ ਅੰਧਾ ਹੈ, ਨਿਕਟ ਤੋਂ ਨਿਕਟ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। जगत दूर दे तल ते सुजाखा है, निकट दे तल ते अंदर। इंज कह लो मनुख दियां अखां दूरदर्शन ने, निकट दर्शन नहीं ने। दूरदर्शन ने, नजदीक दर्शन नहीं ने, निकट दर्शन नहीं ने। इसका मतलब जो नेड़े तो नेड़े है, जब दिखाई नहीं देता तो उसका ज्ञान भी नहीं, जब दिखाई नहीं देता तो उसका बोध भी नहीं। तो सारा संसार ईश्वर दे तल ते अज्ञानी मनिया जाएगा, ज्ञानी नहीं, अज्ञानी। क्योंकि पदार्थ का बोध है, परमात्मा का ज्ञान नहीं है। संसार का ज्ञान है, निरंकार का ज्ञान नहीं है। शरीर का ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान नहीं है। फल फूल वनस्पति रंग रूप आकार का ज्ञान है, पर जो आकार तो रहत निराकार है उसका ज्ञान नहीं है। अंधा है मनुख परमात्मा दे तल ते, अध्यात्मक तल ते। उर्दू दे हो गुजरे इस सदी दे मायानाथ शायर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, वो कहते ने दिले दीना भी कर खुदा से तलब के आंख का नूर दिल का नूर नहीं। इस्लाम विच अरदास लई लवस प्रार्थना लई जो शब्द है वो है दुआ। भी खुदा दे अगों दुआ कर रहे हैं, कुछ मंग रहे हैं। ये आलम ये अनुभवी पुरुष कहता है खुदा दे कलो प्रभु दे कोलो जब तू दुआ करें, उस दे अगों दुआ करें तो खुदा दे कोलो ए भी मंगया कर, ए खुदा वो अखां दे जिड़ियां तैनू वेख सकन। दिले दीना भी कर खुदा से तलब के आंख का नूर दिल का नूर नहीं। इलम में भी सरूर है लेकिन ये वो जन्नत है जिसमें होर नहीं। होवेगा अक्षरी ज्ञान देश भी कुछ सरूर, होवेगा अखरी बोधा देश भी कुछ सूझते समझ, लेकिन इस दिच सरूर नहीं है, इस दिच मस्ती नहीं है, इस दिच वो रस नहीं है जिस दे नाल आकार दे जगत दे सारे रस बेरस हो जाते हैं। तो ये आलम कहता है मंगे अगर उस अखरों जो निकट तो निकट है देख सके। जगत दे सारे संबंध भी दूर ने और कई दफा ते बहुत दूर चले जाते हैं। मां का संबंध, पिता का संबंध, ग्रामा का संबंध, भैणा का संबंध, पत्नी का संबंध, पति का और बच्चे अक्सर हर वक्त नाल नहीं आते, दूर हो जाते हैं। कई दफा ते मौत उन्होंने हमेशा लई दूर कर देती है, हादसे हमेशा लई दूर कर देते हैं। पर कितने भी नेड़े हो फिर भी दूर ने। एक फुट की दूरी, दो फुट की दूरी, दस फुट की दूरी आखिर दूरी है, लेकिन जो नेड़े तो नेड़े रोम रोम दे उते नहीं दिखाई दे रहे। दृश्य दिखाई दे रहे है, अदृश्य नहीं दिखाई दे रहा। आकार दिखाई दे रहे है, निराकार दिखाई नहीं दे रहा। तो उस निराकार नु किस तरह वेखिए। साडे देश के ऋषि मुनिया ने एक तीसरी अख का भी जिक्र किया है। शायद परमात्मा का एक नाम है त्रिलोचन, तीन नेत्रां वाला। और बहुत सारे मनुखां दे नाम भी चूंकि धार्मिक ने ईश्वरमय ने तो त्रिलोचन नाम रखा जाता है। त्रिलोचन तीन नेत्रां वाला, तीन अखां वाला। परमात्मा ने पशुओं नूं भी दो दो अखां दित्तियां ने, मनुख नूं भी दो दित्तियां ने। त्रिलोचन तीन नेत्र तीसरी अख। वाकई विद्वान इस त्रिकफी दे दो अखां दे मध दे तीसरी अख मनदे ने, वो है ऐसी अख जो अदृश्य है। कई दफा तो ये दो अखां भी बंद हो जांदियां, संसार भी नहीं दिखाई देता, रिश्ता टुट जाता है, तां भी तीजी अख नहीं खुलती। जीवन यात्रा उसकी सफल मननी चाहिए है, दो अखां बंद होवन उस तो पहले तीसरी अख खुले। संसार नाल देखण दा रिश्ता टुटे उस तो पहले निरंकार दे दर्शन हो जाए। पदार्थां नूं वेखण दा संबंध टुटे उस तो पहले परमात्मा दिसण लगता है। परवार दृष्टि तो ओझल होवे उस तो पहले निरंकार दृष्टि दे आ जाता है। और मनुख मान नाल कह सके मैं पेखे होरी ऊंचा मोहन सबते ऊंचा। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं ऊंचिया तो उच्चा जो महान देख रहे हैं असी वेखे। भगत कबीर उस तीजे नेत्र भी दो दो नेत्रां नाल तस्वीर देंदे ने दो दो लोचन पेखा हों हर बिन अवर न देखा। मैं तो वेख रहे हैं हरी तो बिना हुण कुछ भी नहीं दिखाई देंदा, हरी ही दिखाई देंदा। दरअसल तीजा नेत्र इन्हां दो अखां दे समा जांदा है। वो तीजी अख इन्हां दो अखां नूं महान कर देंदी है। कई दफा देखे है खुशी रिच महान खुशी रिच अखां पहले नालों ज्यादा खुल जांदियां वड्डियां हो जांदियां। जिसनूं मन देखना चाहुंदा है और देख के रस मिले देख के खुशी मिले अख वड्डी हो जांदी। जिसनों मन देखना ही नहीं चाहता और देख के दुख होवे देख के घृणा पैदा होवे देख के दुविधा पैदा होवे अख छोटी हो जाती है, अख छोटी हो जाती है। पर जिस दिन प्रभु की झलक मिलती है और वो तीसरी शक्ति दृश्य शक्ति इन्हों दो नेत्रां दे समांदी है ये दो अखां बहुत महान हो जांदियां बहुत वड्डियां हो जांदियां ने। सारा ब्रह्मंड ब्रह्म का रूप जो है दिखाई देने लग पैंदा है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज एक दिन प्रसन्न होके भाई साहब भाई नंद लाल नूं कहिंदे ने पुरखा तू कुछ मंग असी तेरी झोली दे छपाई है तैनू दे के सानू खुशी होवेगी तू मंग सानू खुशी होवेगी। है न ऐसे रिश्ते जिन्हां नूं दे के खुशी मिलती है और दुनिया विच हैं ऐसे सन्मन जिन्हां कोल खो के खुशी मिलती है। खो लईए इन्हां दा खो लईए धन खो लईए संपदा खो लईए इज्जत मान मर्यादा खो लईए मौका मिल जाए तो जिंद जान भी खो लईए। हैं कोल खो के सुख मिलता है जिन्हां कोल खो के आनंद मिलता है। पर दुनिया विच हैं ऐसे जिन्हां नूं दे के खुशी मिलती है दे के प्रसन्नता मिलती है दे के आनंद मिलता है। इसनों संपदा दे दईए इसनों धन दे दईए इसनों मान प्रतिष्ठा दे दईए इनू मान सन्मान दे दईए और जे किधरे लोड़ पै जाए तो इसनों अपनी जिंद जान दे दईए। दे के भी खुशी मिलती है खो के भी खुशी मिलती है। जो अपना है अजीज है बहुत प्यारा है बहुत प्यारा है मन नूं चंगा लगता है उन्हों देख के खुशी मिलती है देख के खुशी मिलती है अखां वड़ियां हो जाएंगी। जिस नाल घिरना है उस कोल खो के खुशी मिलती है अख छोटी हो जाती है अख वेखना भी नहीं चाहती उसको। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का फरमान नंद लाल तू मैनू बहुत अजीज है तू मैनू बहुत प्यारा है तू मैनू बहुत चंगा लगता है तेरी सेवा तेरा ज्ञान तेरी इबादत तेरी श्रद्धा तेरी भावना वाकई महान है तू कुछ मंग असी तेनू देईए तू मंगे ये साड़ी खुशी असी तेनू देईए ये साड़ी प्रसन्नता ये साड़ा आनंद तू मंग। भाई साहब भाई नंद लाल मंग करते हैं। एक गल वखरी है कि भाई साहब का सारा कलाम परशियन दे चे फारसी जबान दे चे और गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की दुनिया की भाषावां दे संबंध विच भावना ए है समस्तुल जुबां है के साहिब के राह है हे परिपूर्ण परमात्मा सारिया जबाना विच तेरी ही जबान है सारी भाषावां विच तेरी ही भाषा है सब तेरी ही भाषा है। जब सब कुछ तैथों आया है तो भाषा भी तैथों आई है जब सब कुछ तैथों आया है तो जबान भी तैथों ही आई है जब जबान तैथों आई है तो जबान तो निकले अखर भी तैथों ही आए और किधरों नहीं आए। भाषा दे संबंधित दुविधा गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज इंज मिटाते हैं क्योंकि किधरे मजहब के नाते भेद खड़ा होंदा किधरे जात पात के नाते भेद खड़ा हो जाता है किधरे मुल्क के प्रांत के नाते भेद खड़ा हो जाता है और किधरे भाषा के नाते भेद खड़ा हो जाता है। भाषा के भेद में गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज मिटाते हैं, फरमान करते हैं समस्तुल जबां हैं कि साहिब के राह हैं, हे परिपूर्ण परमात्मा सारिया जबाना दे तो ही है, जबान चो बोले हुए अखरां दे तो है और निकली हुई आवाज धुन ए तो ही है। भाई साहब भाई नंदलाल उन्हां दी जो जबान है वो पर्शियन है, फारसी है। जब धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज फरमान कर देने मंग करो मंग करो, असी दे के खुश होवांगे तो मंग सानू दे के प्रसन्नता मिलेगी, तो भाई साहब जी मंग कर देने कहिंदे महान मनुखां दी मंग भी महान आउंदी है, तुच्छ मनुखां दी मंग भी तुच्छ आउंदी है। जैसे बच्चा खिडौने लई रोलेगा खिडौने दी मंग करदा है, मामूली है तुच्छ है, सोच शक्ति मामूली है, मंग तो ही पता चलता है मनुख की है, वास्तविक मनुख की है। जिस मनुख दी मंग बेमैनी है, जिस मनुख दी मंग जड़ है, जिस मनुख दी मंग कोई खास नहीं, वो मनुख भी कोई खास नहीं है, कुछ भी खास नहीं है। महान मनुखां दी चाहत बहुत महान होती है, अजीम होती है। तो भाई साहब भाई नंदलाल अपनी मंग जगत दे दाते सर्वशक्तिमान धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे अगों रखते ने, या इलाही चश्मे बीना ए बिदे दर शर्म अज इश्क सौदा ए बिदे, ए मेरे इलाही ए मेरे गुरु जे देना है ता ओ अख दे जिड़ी तेनू वेख सके, जिड़ी तेनू वेख सके। बंद अखा ने मनुख सुत्ता पे है, जगाण वास्ते आवाज चाहिदी होंदी है, आवाज खड़ाक। इसी तरीके नाल परमात्मा दा जो नाम है, परमात्मा दा जो शब्द है, रसना अगर उसनु अलापे ते कन उसनु सुनन तो एक दिन मन विच चाहत पैदा हो जाती है, जिसनु सुन रहे हैं जिस तो मन प्रभावित है उनु वेखिए, सुन सुन नाम तुम्हारा प्रीतम प्रपे खण का जाओ, वेखण दी लालसा पैदा होगी, वेखण दा चाह पैदा हो गया, वेखण दी भुख पैदा हो गई है। जैसे जैसे जप करदिया करदिया अंदर दिया शक्तियां जागदिया ने और एक दिन वाकई अखां पूरियां खुल जांदियां ने, और जैसे खुल दिया ने फिर संसार नहीं दिखाई देंदा निरंकार, फिर पदार्थ नहीं दिखाई देंदे परमात्मा, फिर परिवार नहीं दिखाई देंदा, फिर निरंकार दिखाई देंदा। मां विच प्रभु की झलक मिलती है, पिता विच प्रभु की झलक मिलती है। जैसे कि धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान कर रहे हैं, मात पिता सुत बंदप भाई नानक होवा पार ब्रह्म सहाई, ए परिपूर्ण परमात्मा हुण ते मां दे रूप विच भी तू दिखाई देना। मैं छोटा सी मासूम सी कमजोर सी, तू मां दे रूप विच मेरा सहारा बनया, पर जद मैं बुढ़ा बन गया कमजोर हो गया लावर हो गया तो पुत्र दे रूप विच मेरा सहारा बनया, किधरे पत्नी दे रूप विच मेरा सहारा बनया तू पति दे रूप विच मेरा सहारा बनया, तू पुत्रां दे रूप विच मेरा सहारा बनया, तू भरावां दे रूप विच मेरा सहारा बनया। परिवार विच निरंकार दिखाई दे रहा है, पदार्थां विच निरंकार दिखाई दे रहा है, सारा ब्रह्मंड ब्रह्म दा जो है रूप दिखाई दे रहा है। धन गुरु अमरदास जी महाराज फरमान करते ने, ए नेत्रो मेरे हो हर तुम में जोत धरी, हर बिन अवर न देखो कोई नदरी हर निहालिया। अखां नूं उपदेश कर रहे ने धन गुरु अमरदास जी महाराज बिरद बाबा, हे अखियो प्रभु तो बिना और कुछ ना देखना। धन गुरु नानक देव जी महाराज इत्थे तक कहिंदे ने, अखी प्रेम कसाइया हर हर नाम पिखन, जेकर दूजा वेख दे जन नानक कढ़ दिचन। अखां विच इतना प्रेम हर पासे हरी हरी हरी, पर जेकर दूजा वेख दे, गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करदे ने, ਇਹ ਆਖਿਓ ਤੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਸਨ, ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਅੱਖਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮਹਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮਹਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮਤ ਦਰਸ਼ਨ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅੱਖ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਐਸੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਐਸੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਔਰ ਐਸੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਦੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਰਸ਼ਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਗਰ ਨਿਹਾਲ, ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਕਈ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇ, ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਹੋਵੇ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੋਵੇ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਔਰ ਜੋ ਪਾਵਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੰਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਨੇ ਵੇਸਵਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੇਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਉਸ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਕਥਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਅਚਾਨ ਚੱਕ ਗਨਕਾ ਵਾੜੇ ਜਾਏ ਖਲੋਤਾ, ਗਨਕਾ ਦੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀ ਮਾਰੀ ਗਨਕਾ ਦੇਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਧੁਨੀ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਗੰਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਫੈਸ਼ ਆਲਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੱਜ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਆਲਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਨੇਤਰ ਉਸ ਦਿਨ ਮਹਾਨ ਸਮਝ ਲੈਣੇ ਜਦ ਅੱਖਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੰਡਣ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਔਰ ਅੱਖਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੰਡਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੂਰੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣ, ਔਰ ਪੂਰੀਆਂ ਉਸ ਦਿਨ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜੈਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਨ ਅੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਅੱਖ, ਅੱਖੀ ਬਾਜੋਂ ਵੇਖਣਾ ਬਿਨ ਕੰਨਾ ਸੁਣਨਾ, ਇਹੀ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੇਖਣਾ ਭਾਵ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਅੱਖ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ। ਅੱਖਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮਹਾਨ ਜਦ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਬਣ ਜਾਣ, ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਬਣ ਜਾਣ, ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਬਣ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਅੱਖਾਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋ ਗਈਆਂ।